इनमें विनर कौन हुआ और लूजर कौन हुआ दुनिया के लिहाज से? कोई भी नहीं। वो बादशाह विनर नहीं हो गया और वो फकीर लूजर नहीं हो गया। फिर हमें तो ऐसे ही लगता है ना, हाय हाय निकलती है जिस वक्त लोगों के तयुशात देखते हैं, हाय कितना खुशकिस्मत, हाय देखो इनकी शादी कितनी आलीशान हुई, इनके पास इतना पैसा है। किसी का मैंने पढ़ा, वो उन्होंने लिखा इनके पास इतना पैसा है कि एक दिन में 5 करोड़ खर्च करें तो तब भी मतलब पता नहीं सदियां गुजर जाए इनके पैसा खत्म नहीं होगा, इतनी मालो दौलत। लेकिन अंजाम क्या, फिर हम कैसे मुतासिर हो जाते हैं इस सब से? अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका, हकीकत ऐसी ही है कि ये सब छोड़ के वो लोग चले गए, इसी तरह हुआ उनका अंजाम। और फिर हमने कौमे फिरौन का वारिस किसी और कौम को बना दिया, वो गए कोई और आ गए, वो गए कोई और आ गए, तुम जाओगे कोई और आ जाएंगे। हमने पक्का ही यहाँ पे अपना खैमा लगाया हुआ, हम सोचते हैं भाई यहीं पे हमने रहना है, हमारे बाद किसने आना है, इन घरों में भी मैं ही बसती रहूंगी, इसकी मलका मैं ही हूं, बस मेरे सिवा कोई नहीं। हमने तो देखा है इसी दुनिया के अंदर एक औरत एक घर की मलका बन के बैठी होती है, फिर वो जमीन के नीचे चली जाती, दूसरी आ जाती है, उसी बिस्तर पे कोई और लेट रहा होता है, उसी घर को और कोई हुक्मरानी कर रहा होता है, उसी शोहर के साथ कोई और मजे उड़ा रहा होता है। ये है दुनिया। समा बकत अलैहिमुस्समा उवल अर्द वमा कानू मुंतरीन, उनके ऊपर ना आसमान रोया ना जमीन रोई, वमा कानू मुंतरीन, और हम मतलब देने वाले नहीं थे, तो क्या आसमान और जमीन रोते भी हैं? इससे बात से तो पता चलता है कि हाँ आसमान और जमीन रोते भी हैं, किसी नेक के जाने के ऊपर रोते हैं, इसलिए कि एक हदीस से पता चलता है, गो कि उसकी सनद जरा ज़ईफ़ है, लेकिन उससे पता चलता है कि आसमान में दो दरवाजे हैं, एक से इंसान की रोजी उतरती है और दूसरे से उसके आमाल ऊपर को चढ़ते हैं। जब वो मर जाता है तो वो अमल और रिस्क को गुमशुदा पाते हैं ये दरवाजे, तो वो रोते हैं। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह हू अकबर। तो इब्ने अबी हातिम में एक और रिवायत आती है, आपसे सलम ने फरमाया कि इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ और फिर गुर्बत पे आ जाएगा, यानी अजनबी था, अजनबी फिर दोबारा हो जाएगा। याद रखो मोमिन का अंजाम मुसाफिर की तरह नहीं, मोमिन जहां कहीं मुसाफिर की तरह नहीं है अंजाम उसका, जहां कहीं सफर में होता है, जहां उसका कोई रोने वाला भी ना हो, वहां भी उसके रोने वाले आसमान और जमीन मौजूद होते हैं, यानी जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है कि ये नेक इंसान था, इसका अमल यहां से ऊपर चढ़ा करता था, सुबहान अल्लाह, कोई वो भी इतने खुशकिस्मत है। देखें अगर एक इंसान कुछ भी ना छोड़ के गया इस दुनिया के अंदर, गुर्बत में उसने जिंदगी गुजारी और परेशान हाली में गुजारी, हम को कहते हैं हाय बेचारा, हाय बड़ा बदकिस्मत, लेकिन उसके ऊपर जमीन व आसमान रो रहे हो तो क्या खुशकिस्मती है। वो भी उसको मिस करते हैं कि इस जमीन के ऊपर वो सजदे करता था, इसके ऊपर उसके आंसू बहते थे, इस पे वो नेकी में दौड़ दौड़ के हिस्सा लेता था, और ये आसमान जहां से उसके अमल नेकियां ऊपर चढ़ती थी, वो आसमान भी रोता कि वो धंधा आज चला गया, जमीन कहती है वो कहाँ गया जिसके सजदे मेरे ऊपर हुआ करते थे, वो रोती है। खुशकिस्मती है ना, और एक बादशाह है ऐसे फिरौन, उसकी कौम जैसे इतने बाग इतने चश्मे, इतना बड़ा उनका आलीशान तमद्दुन और इतनी बड़ी बादशाहत, और उनकी एक हुक्म के ऊपर क्या से क्या हो जाए, और वो मर रहे हैं जिनको लोग देख के कहे हाय कितने खुशकिस्मत हैं, देखो क्या जबरदस्त जिंदगी थी इनकी, सब कुछ इसने पा लिया और उसके ऊपर ना जमीन रो रही ना आसमान, क्योंकि ये इतने बदनसीब लोग थे। देखें आपको पता नहीं हजरत मुआज बिन जबल, उनकी वफात शहादत के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा था और इतने फरिश्ते उतरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे टिपी टो चल रहे थे, आपने फरमाया मुझे पैर रखने की जगह नहीं है, सुबहान अल्लाह। तो ये जब पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं और जमीन और आसमान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, तो रो भी सकते हैं, मगर उनका रोना हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते वो कैसे रोते होंगे, कैसे वो मिस करते होंगे उस, रोना कब होता है जब इंसान मिस करता है, तो वो कैसे मिस करते होंगे इन लोगों को। कैसे ये लोग उन इस जमीन के ऊपर नरमी से चलते थे, तकबर से नहीं चलते थे। कैसे इस बंदे की मजलिसें मेरे ऊपर लगती थी, गैदरिंग्स होती थी जिनमें ये अल्लाह का जिक्र करता था, कैसे ये मेरे ऊपर इबादत कर किया करता था अल्लाह ताला की, ये जमीन मिस नहीं करती होगी। तो जिन जगहों पे हम बैठ के कुरान पढ़ते हैं, जब मैं अपना लास्ट घर छोड़ा ना, तो जो मेरा लास्ट दिन था जब वहां से जाने लगी थी उस घर से, तो जो लास्ट मैंने अमल किया वहां पे, वो उस कमरे के अंदर नफल अदा किए। और मुझे बस यही बात हो रही थी कि चूंकि उसमें गैर मुस्लिमों ने आना था उसके बाद, कि अल्लाह अकबर, ये दरो दीवार जो है, इन्होंने इतना अरसा देखा कि इस घर के अंदर मैंने इतने अरसे तक इस कमरे के अंदर क्लासेस पढ़ाई, रमजान की रातें गुजारी, और जो भी मैंने इल्म भी लिया, और फिर जो भी अल्लाह का जिक्र, और नमाज की भी मेरी जगह वहां पे। तो ये दरो दीवार भी याद करेंगे इसको, कि अब इन इनके अंदर कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं होगा। तो ये दरो दीवार, क्योंकि कयामत के दिन जमीन भी गवाही देगी ना। आपने सूरह जिलजाल में आपने देखा है, यौम तो हदीस व अखबार रहा, वो अपनी खबरें बयान करेगी जमीन, तो ये जमीन इंसान की गवाही बन जाएगी। तो ये फिर रो भी सकती है, कुरान की नस है इससे, ये मिस भी फिर करती है इसका मतलब, ये सब चीज को नोट कर रही है, अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही है। तो इंसान जहां जाता है उसकी ये नेकियां आसमान से चढ़ रही हैं, जो जहां पे भी वो करेगा, और जमीन पे जहां जाके वो नेकी करेगा उस जमीन में उसके रिकॉर्ड बन रहे हैं। और फिर ये जमीन और आसमान मिस करते हैं, तो किसी के लिए कोई रोने वाला भी ना हो, लेकिन अगर वो नेक इंसान है तो उसकी खुशकिस्मती कि जमीन और आसमान उसके लिए रोए। और दूसरा उलमा ने ये मतलब लिया है कि इससे आसमान वाले और जमीन वाले मुराद हैं, ना जमीन वाले उनके लिए रोए, ना आसमान वाले को, ना कोई फरिश्ते उनके लिए उन्होंने अफसोस किया। इतने बदबخت लोग थे ये, इतने हकीर लोग थे अल्लाह की नजर में। जमीन में भी चौपाए वगैरह भी जालिम एक इंसान होता है ना, उसे निजात पाते हैं वो, कहते हैं क्योंकि जो जालिम होता है उसकी वजह से बारिशें रुक जाती, जो गुनाहगार होते हैं गुनाहों के, इंसानों के गुनाहों की वजह से बारिशें रुक जाती हैं, तो ये चौपाए वगैरह भी उसकी वजह से तकलीफ में आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि मोमिन बंदा दुनिया की मुशक्कतों और तकलीफों से अल्लाह की रहमत में निजात पा जाता है, यानी वो दुनिया में तो मुशक्कतों में तकलीफों में होता है, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो अल्लाह की रहमत में चला जाता है। और फाजिर फासिक जो बंदा है, उससे अल्लाह के बंदे, शहर, दरख्त, चौपाए सब आराम पा जाते हैं। यानी वो जब जाता है ना, तो ये सारी चीजें ना शुक्र करती होंगी कि ये इससे खलासी मिली, क्योंकि इसके गुनाह इतने होते हैं जिसकी वजह से बाकियों पे भी वबाल आता है। तो जमीन वाले और आसमान वाले मुराद भी हो सकते हैं इसमें। हमें ऐसे ही अपने आसार छोड़ने चाहिए, ऐसे ही अपने अमल छोड़ने चाहिए जमीन में, कि जमीन वाले भी या जमीन भी हमारी एक तो अच्छी गवाही दे कयामत के दिन, और हमारे जाने पे रोए, ना कि हम ऐसे आसार छोड़ें कि कभी उससे लड़ रहे हैं, कभी उससे झगड़ रहे हैं, कभी यहाँ फसाद, कभी वहां फसाद, इधर की बातें, उधर लगाइयां बुझाइयां, ऐसे वैसे ऐसे अमल छोड़ के जाएंगे तो बताएं, ऐसे से तो फिर लोग शुक्र ही अदा करेंगे, इंसान भी शुक्र अदा करते हैं, है ना। इंसान भी कहते हैं कि शुक्र ही है बस, कम जहां पाक, शुक्र ही है गई दुनिया से मुसीबत हमारे लिए, क्या जमीन रोएगी ऐसे बंदे के लिए। तो इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला, मैं उनमें हूं कि जो जिसके लिए पीछे अच्छी गवाहियां हों, और जिसके लिए आसमान और जमीन रोए कि ये अल्लाह का प्यारा बंदा था, ये भी उनकी गवाही ही है ना। जब वो रोएंगे तो ये उनकी गवाही है कि वो मिस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं कि सबका अकवाम में गौर करें तो जिन अकवाम से अल्लाह ताला ने अपनी नियमतें छीन ली, तो उनका सबब सिर्फ एक बात होगी, अगर आप गौर करें पिछली अकवाम के अंदर, सिर्फ एक बात होगी उनके नेमते छीनने का सबब, कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत की और उसके रसूलों की नाफरमानी की। सिर्फ ये सबब आपको नजर आएगा। इसका मतलब इंसान के जो गुनाह है ना, वो इंसान से नेमतों के छीनने का सबब बन जाते हैं। ये जो गुनाह है, ये जो इंसान इधर उधर नाफरमानियां करता फिरता है और अपने आप को आजाद समझता है, इससे नेमत छिन जाती है और इनसे भी छिन गई। ये सारे बागात चश्मे बजाए इसके अंदर रहते, अपनी जिंदगियां पूरी गुजारते और जाते, एक्सीडेंटल उसके अंदर यानी एक अल्लाह का अजाब आया एकदम से, ये उनके ऊपर हादसा पड़ा के आन की आन में सारे के सारे ही खत्म हो गए। वलकद नजैना बनी इसराइल मिन अलआज़ाबिल मुहीन, और हमने निजात दी बनी इसराइल को रुसवा कुन अजाब से। क्या था उनके ऊपर रुसवा कुन अजाब बनी इसराइल के ऊपर? या उनके बच्चों को जिबा कर दिया जाता था, उनकी लड़कियों को लोंडियां बना लिया जाता था। ये किसी कौम के लिए कितनी जिल्लत की बात थी। इनसे इतने मुशक्कत के काम लिए जाते थे और इनको रेस्ट भी करने नहीं दिया जाता, इतना इनसे सख्त काम लिए जाते थे। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम, आज भी देखे जो मॉन्यूमेंट्स इनके आज भी खड़े हैं, आपका मतलब उन्होंने खुद बनाए थे ये? इन्हीं से तो लेबर वर्क करवाते थे वो, इनसे मटेरियल बनवाते थे, इनसे सारा ये काम करवाते थे। बहुत सख्त इनको उसमें रखते थे, मारपीट और इनके ऊपर जुल्मो सितम अलग था। किसी को भी कत्ल कर देना कोई पूछने वाला थोड़ी था कि बनी इसराइली को क्यों कत्ल किया, मार दिया उसको बस। उनके गुलाम थे, जो मर्जी करते इनके साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो मर्जी सलूक करते। एक शेम है ना किसी कौम के लिए कि उसकी औरतों को सबको लौंडियां बना लिया उन्होंने, और जो बाकी रहे सहे मर्द थे उनसे ऐसे काम कराते थे। तो उनको बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने रुस्वा कुन जलील करने वाले अजाब से निजात दी, मिन फिरौन, फिरौन से, फिरौन हिमसेल्फ एक अजाब था, उससे भी निजात दी अल्लाह ताला ने। इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, वो था बुलंद दर्जा वाला, हद से बढ़ने वाला। आलियन का यहाँ पे क्या मतलब? कि वो अपने आप को यानी बुलंद करना, मतलब जुल्मो ज्यादती में अपने आप को बड़ा करने वाला था। ये नहीं कि वैसे दर्जे में वो बड़ा आली मकाम था, जुल्म में और ज्यादती में बहुत बढ़ जाने वाला था। और फिर मुसरिफीन भी, इसराफ भी क्या होता है? हद से गुजर जाना। तो वो जुल्म और सितम भी करता था और दूसरा उसमें हद से भी बढ़ जाता था। यानी एक उस जुल्म है वो ठीक है, वो भी जुल्म है, लेकिन एक उसमें भी टू मच करना। जैसे उनको जादूगरों को, एक एग्जाम्पल है, जादूगरों को उसने मौत का फैसला सुना दिया, ये जुल्म था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत कितनी इबरतनाक बना दी, उसमें भी हद से बढ़ यानी जुल्म में इंतहा कर देता। अब मासूम न्यू बॉर्न बेबीज को जिबा करना हद से बढ़ जाना है। वैसे ही किसी बच्चे को मार देना वो सही नहीं, मासूम है, लेकिन उसके अंदर जिबा कर देना हद से बढ़ना नहीं, इतदाल की हद पार कर देना। और दूसरा आलियन का मतलब क्या है? वैसे तो बुलंद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो खुद को बुलंद बनाने वाला था, वो था नहीं, यानी इतना सरकश था, खुद को बहुत ऊपर करता था। अस्तग़फिरुल्लाह, वाला के देख पर ना हूं। और अलबत्ता तहकीक चुन लिया हमने उनको, आला इल्म, उनके इल्म की वजह से, अल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। किनको चुन लिया? होम की जमीर किस तरफ जा रही है? बनी इसराइल की तरफ। तो इसका एक माना यह है कि हमने बनी इसराइल को चुन लिया उनके इल्म की वजह से तमाम जहानों पर, ठीक है। और एक और माना ये कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से उनको चुना, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म है, वो जिसको चाहे चुन ले। अल्लाह ताला ने उनको चुना, जहान वालों के ऊपर चुन लिया, यानी उनको फजीलत दी सारे जहान वालों पे। किस चीज के लिए चुन लिया? अपना पैगाम आगे देने के लिए, कि वो अब ये काम करेंगे कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। और वो चुने हुए रहे, कब तक रहे? जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत नहीं होगी, आपकी रिसालत आने के बाद अब उम्मत मुहम्मदिया को चुन लिया गया। अब इस उम्मते मुस्लिमा को चुना गया इस काम के लिए, अब उनकी फजीलत खत्म हो गई, उनका चुनाव तब तक था जब तक ये उम्मत नहीं खड़ी हुई उनके बाद, जब उन्होंने इतनी नाफरमानियां की। अल्लाह ताला ने पूरे सूरह बकरा में इनकी नाफरमानियों की चार्ज शीट बता दी है कि क्या क्या इन्होंने काम किए, इतने अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाले काम किए कि ये मغضوب हो गए। अल्लाह ताला ने फिर इनसे ये मनसब ले लिया, इनको बहुत बड़ा मकाम दिया था अल्लाह ताला ने, फिर इनसे छीन के उम्मते मुस्लिमा को दे दिया। तो अल्लाह ताला ने चुना था इनको, अल्लाह ताला का चुनाव होता है इस काम के लिए, अल्लाह चुनता है लोगों को, ये वो अल्लाह का फैसला है। बाज दफा इस काम के लिए अल्लाह ताला किसी को भी चुन सकता है, बाज दफा ऐसे आप सोचते हैं इसको क्यों ये चुना गया, इसके अंदर क्या खूबी है, वो अल्लाह ताला को पता है। मुशरिकीन मक्का का भी यही एतराज था ना कि इनको क्यों चुना गया है, इनके अंदर ऐसा क्या, ये तो यतीम थे, हम सरदारों को चुना जाना था। तो अल्लाह ताला ये नहीं देख के चुनता किसी को कि किसी की शक्लो सूरत कितनी खूबसूरत है, यहाँ किसी का पास पैसा कितना है, किसी का ओहदा कितना बड़ा है, कौन कितना बड़ा सरदार है, कौन कैसा है, इसकी बेसिस पे नहीं, या किसी का खानदान कितना ऊंचा है। बेशक अंबिया के खानदान हमेशा ऊंचे रहे हैं, लेकिन इस बेस पे नहीं चुना। मैंने आपको हदीस पहले भी बताई थी, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों की तरफ नजर की तो उनके अंदर बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाया, तो उनको अपनी नबुवत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया, और उनके बाद दिलों का जायजा लिया तो सहाबा के दिलों को सबसे बेहतरीन पाया, तो अपने नबी के साथी बना दिया उनको, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला चुनता है, उसका चुनाव है, उसने पहले बनी इसराइल को चुना, उसके बाद उम्मते मुस्लिमा को चुना, और उम्मते मुस्लिमा से ये काम लेने के लिए इनको बना दिया कि अब तुमने ये काम करना है, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का, और पैगंबरों का पैगाम आगे लेके, आखिरी नबी का पैगाम आगे लेके तुमने पहुंचाना है, अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया तक अब तुम बताओगे, तुम पहुंचाओगे, अब कोई और नबी नहीं आने वाला। लेकिन बनी इसराइल ने भी उसका पास नहीं रखा, और उम्मते मुस्लिमा भी नहीं रख रहे। तो हम जितना मर्जी समझें उसको क्यों चुना, उसको क्यों चुना, ये अल्लाह ताला का फैसला है। और दूसरा मैंने आपको बताया जो पहला माना कि हमने इल्म की बिना पे उनको चुना, अल्लाह ताला का चुनाव, इख्तार का मतलब होता है इख्तियार करना, किसी को इज्जत देने के लिए मुंतखब करना, इज्जत दी जाती है, ऐसे नहीं चुनाव, चुनाव तो किसी चीज का भी वैसे हो सकता है, लेकिन किसी को इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी। जहान वालों, जहान वालों पे मतलब क्या, उस जमाने के जहान वालों पे, ये नहीं कि कयामत तक के, वो आता ही ना मिन अल आयाती मा फीह बला मुबीन, और हमने दी उनको निशानियां जो आजमाइश थी खुली, हमने उनको वो निशानियां दी, वो आयात दी जो उनके लिए खुली आजमाइश बन गई। आयात कौन सी दी, वो नेमतें जो बनी इसराइल को मिली, उनके दुश्मन से उनको निजात दी अल्लाह ताला ने, उनके लिए समुंदर को फाड़ दिया, उनके लिए बादलों का साया किया, उनको मनोसलवा उनके लिए उतारा, ये सब थी ना निशानियां। अब ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ठीक है, और यानी अल्लाह ताला ने उनको बहुत इस दुनिया के अंदर नेमतों से नवाजा, उनको चुना भी, उनको नेमतों से भी नवाजा, और लेकिन हर नेमत के साथ आजमाइश होती है। खास तौर पे मैदाने चीन में देखें आप, कितनी नेमतें उनके ऊपर आई ना, कोई छर छुपाने की जगह थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तो साया कर दिया बादलों का, ना कोई पानी पीने को था, चश्मे जारी कर दिए, गोश्त वगैरह कितनी बड़ी एक, और वो भी क्वेल का गोश्त, कितनी बड़ी एक लग्जरी आज भी समझी जाती है, वो सलवा उनको दे दिया, मन उनके लिए थे। तो नेमते आजमाइश है कि कितनी इंसान की कदर करके अल्लाह के आगे झुकता है, याद रखे जिसके पास जितनी नेमते ज्यादा है उसके ये उसके साथ उतनी रिक्वायरमेंट है कि वो अल्लाह ताला के आगे उतना ही झुके। हदीस में आता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने कम दिया उसके लिए वो कम पे ही राजी हो जाएगा, कम अमल से ही राजी हो जाएगा। तो क्या मतलब है, जिसको ज्यादा दिया है उसके लिए ज्यादा अमल की जरूरत है, जिसको कम दिया उससे अल्लाह ताला कम अमल पे, अगर वो उस पे राजी हुआ ना, जिसको कम अल्लाह ताला ने दिया, अगर किसी को और किस चीज से महरूम रखा वो उस पे ही राजी है, जिसको कम दौलत दिया वो उसके ऊपर ही राजी है, अल्लाह ताला उसके भी कम अमल पे राजी हो जाएगा क्यामत के दिन। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा है उसके रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो इनको बहुत सारी नेमतें दी गई, उनको दुनिया में शानो शौकत दी गई, अल्लाह ताला ने चुन लिया अपने काम के लिए, तो ये आजमाइश थी उनके लिए, अल्लाह ताला ने इनको भी आजमा लिया। इन्नहा उलाइला यकूलून, बेशक ये लोग अलबत्ता कहते हैं, कौन कहते हैं, अब कुफारे मक्का की तरफ इशारा है, इन ही इल्ला मौतातुनल उला वमा नहनु बिमुनशरीन, कि ये हमारी तो एक ही मौत है, इसके बाद हमने कोई नहीं उठाया जाना, ये जो हमने मर जाना है ना दुनिया से जाने वक्त, बस वो ही है, यानी क्यामत वगैरह कुछ नहीं है, दोबारा नहीं उठाना। फातु भी आबाई ना इनकुम तुसादिकीन, तो फिर हमारे आबाओ इजदाद को जिंदा करके दिखा दें अगर आप कहते हैं कि हमने दोबारा उठना है। हालांकि ये वो भी जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में दोबारा उठने की बात नहीं की, कयामत के दिन की बात की है, तो कहते नहीं यहाँ पे उनको उठा के दिखाओ तब हम मानेंगे अगर आप उनको जिंदा करके दिखाएं। और ये इसलिए था कि जो है हमने मानना तो है नहीं, और ये एक बस बहाना था फिर उनको जिंदा करें ना, जबकि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर नहीं, इस तरह जो एक दफा मौत जिसको दे दे उसको जिंदा नहीं करता, और अल्लाह ताला ने मुजजात की फॉर्म में दिखाया हुआ कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, या अल्लाह ताला ने वो 70 लोग जो मूसा अलैहि सलाम लेके गए थे मर गए थे उनको जिंदा फरमाया, हुज़ैर अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा किया 100 साल के बाद। तो अल्लाह ताला दिखाता है अपनी निशानियां, निशानियों के तौर पे दिखाता है, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर को जिंदा करके दिखाया जाए प्रूव करने के लिए कि जो है क्यामत के दिन भी तुम जिंदा हो सकोगे। अल्लाह ताला ने उसकी जगह बहुत सारी और बातें बता दी कि तुम उनसे देख सकते हो कि अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा करता है, तुम देखते नहीं हो। बार बार इंसान को यह बताया गया तुम अपनी तखलीक पे गौर करो, जो अल्लाह तुम्हें नुतफे से पैदा करके इस तरह खड़ा कर सकता है वो दोबारा तुम्हें मार के क्यों नहीं जिंदा कर सकता। तो बहुत सारी निशानी है, जिसने मानना हो तो फिर है ना, अहम खैरुन अम कौम तुब्बा, तुम बेहतर हो या कौम तुब्बा। तो तुब्बा जो था, तुब्बा लकब था यमन के बादशाह का, जैसे फिरौन मिस्र के बादशाह का, कैसर जो था वो रोम के बादशाह का, किसरा ईरान के बादशाह, फारिस के बादशाह का लकब होता था, इसी तरह तुब्बा जो था वो यमन के बादशाहों का लकब था। तो कहा जाता है कि तुब्बा जो था वो खुद तो मुसलमान हो गया था लेकिन इसकी कौम काफिर रही थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल दी क्योंकि वो भी तमद्दुन में बहुत बड़े हुए थे और यमन इनके करीबी था, ये यमन की तरफ तिजारती सफर भी लेकर जाते थे और उनकी कहानियां भी इनको पता थी। तुम बेहतर हो या तुब्बा के लोग बेहतर थे, यानी वो तो तबाह कर दिए गए जब अल्लाह के नाफरमान थे, वो कुफर पे थे तो अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया, उनकी नहीं तुम्हें बात, तुम बेहतर हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा। ये तो ऐसे ही है ना जैसे कहा जाए कि अस्तग़फिरुल्लाह कि आज के जो कौम लूत का अमल करने वाले हैं वो बेहतर है या कौम लूत बेहतर है, वो तो उनको अल्लाह ने तबाह कर दिया तो ये जो वो ही काम करेंगे तो क्या उसके बाद तुम बच जाओगे। तो उनको कहा जा रहा है मुश्रिकी ने मक्का को कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी सी चीज समझते हो कि तुम वही काम करोगे तुम तो आराम से रहोगे, वो पिछले देखो तुमसे भी ज्यादा तमद्दुन में थे, तुमसे भी ज्यादा तरक्की में थे, तुम बेहतर होगे वो यानी दुनियावी तरक्की में, वल्लदीना मिन कब्लिहिम वो इनसे भी ज्यादा थे तरक्की में, और इनसे पहले के लोग भी जैसे आद वगैरह या फिर रोनी को देख लें, मुश्रिकी ने मक्का का क्या था, इनके पास छोटा सी मक्का की बस्ती थी ना, कौन सा इनका इतना बड़ी तरक्कियां थी, कुछ भी नहीं था, हाँ बस काबा था वहां पे, लेकिन अदरवाइज आप उनकी तरक्कियां देखें तो कुछ नहीं थी। आप फिरौन की देखें, आज तक उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें समझ आ जाए कि ये क्या लिखते थे, जो ममीफाई करते थे ये डेड बॉडीज को, आज तक उसका पता नहीं चला कैसे करते थे, उनके बहुत एडवांस थे, बहुत आगे थे, मुशरिकी ने मक्का उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। तो तुम क्या अपने आप को समझते हो, तुमसे तो पहले बहुत बड़ी बड़ी कौमें गुजर गई लेकिन अहलक ना हम, हमने हलाक कर दिया उनको, इन्ना हम कानू मुजरिमीन, वो मुजरिम लोग थे। इसलिए अब कोई कहे नहीं जी वहां पे तो तूफान आ गया था, वहां पे तो जलजला आ गया था, ये कौम तो जमीन के नीचे ऐसे ही चली गई, पता नहीं इनके ऊपर क्या मसले आए थे, इनके पास तो बीमारी आ गई थी, नहीं तुम ये भूल जाते थे, इन्ना हम कानू मुजरिमीन, वो मुजरिम थे इसलिए अल्लाह ने उनको हलाक किया। और मैंने अभी आपको इमाम इब्ने कय्यिम की बात बताई कि आप अगर गौर करेंगे पिछली कौमों की हिस्ट्रीज के अंदर तो आपको एक ही बात समझ आएगी कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, रसूलों को नहीं मानते थे, तभी वो हलाक हुए। तो अब अपने आप को भी यहाँ पे रख के देख लें इसी आयत में कि क्या तुम बेहतर हो या पिछली कौम फिरौन बेहतर थी।
तमदन के लिहाज से, दुनिया की तरक्की के लिहाज से अपने आप को तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो कि आज हम 21st सेंचुरी में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। तो अगर अल्लाह ताला ने इन बातों की वजह से जो अगर वही काम तुम करोगे तो क्या तुम बच जाओगे? या किसी भी कौम का लिख लें, वो कौम जो हलाक हो गई है, दुनिया से चली गई है, वाइप आउट हो गई, किसी भी तरक्की याफ्ता कौम हो, वो उन्होंने नीचे खोदा तो नीचे व्हील भी मिल गया उनको, उन्होंने कहा सदियां पहले इनके पास व्हील था, हमने इसको इन्वेंट करके हमने सोचा हमने कितनी बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, क्या बड़ा ही हमने तरक्की कर ली। तुम देखो तो सही, लोग पिछले जमाने के भी कितने तरक्की याफ्ता थे, आज कहाँ है, उनके आसारे कदीमा खोदते हैं तो नीचे से निकलती हैं चीजें। तो अल्लाह ताला इस चीज को हमें समझने की तौफीक दे कि इंसान की जो नाफरमानी है वो उसको सिर्फ अल्लाह के अजाब तक ही पहुंचाती है। और ये देखिए, ये इसमें इस सूरत के अंदर और यहाँ पे आपको बहुत जगह पे यही बात मिलेगी कि मादी रौनकें और जीनतें और ये सारी जो चकाचौंध है दुनिया की, ये कहीं तुम्हें गफलत में ना डाल दे। और देखो आखरत के लिए तैयारी करो, देखो मान जाओ, देखो सरकशी छोड़ दो, अल्लाह के मुकाबले में मत आओ। वरना देख लो इतने नामवर लोग गुजरे, फिरौन जैसे जिनका आज तक नाम लिया जाता है। सिर्फ ये कुरान में नहीं है, मतलब आप जो कुरान के नहीं भी मानने वाले उनको भी पता है ये फैरो था एक, इतनी बड़ी चीजें थी वो, लेकिन देख लो कि किधर चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको इतना भी ना वक्त मिला कि कुछ वसीयत ही कर जाते, किसी को दे ही जाते, उनसे उनसे अपने शौक ही पूरे कर लेते, उनको तो इतना भी टाइम ना मिला। देखो अल्लाह की पकड़ आती है तो बड़ी सख्त होती है। तो आज भी जो दुनिया में बड़ा बनने का शौक रखता है और सरकशी पे उतरा हुआ है, उसके लिए इसके अंदर मैसेज है। अल्लाह ताला हम सबको इसे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين